प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सप्ताह के श्रोता। एक श्रोता से बातचीत और उनकी पसंद के चंद फिल्मी गीत।
सप्ताह के श्रोता कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत। स्वीकार कीजिए मीनू सिंह का नमस्कार। तो आइए आज के अपने श्रोता साथी से आपका परिचय कराएं। तो आज हमारे साथ हैं बाहुटोला कनिया जिला बालाघाट के हमारे श्रोता अखिलेश कुमार यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
धन्यवाद मैम। सप्ताह के श्रोता सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
जी बिल्कुल, हमारे सभी श्रोता जो हैं वो आपका नमस्कार स्वीकार कर रहे होंगे। और
जी मैम,
हम और हमारे श्रोता साथी सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं?
जी मैं ग्राम साहू टोला कनिया जिला बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैं ये खेती किसानी के साथ राजमिस्त्री का काम करता हूँ।
अच्छा, तो अखिलेश जी हम जानना चाहते हैं कि खेती किसानी के साथ राजमिस्त्री का आप काम करते हैं, पर आप कहाँ तक पढ़े हैं?
जी मैं, मेरा पढ़ाई तो ज्यादा नहीं हुई है, 10वीं तक हुआ है। मेरा पढ़ाई करने का शौक बहुत था, लेकिन क्या है, घर का परिस्थिति सही नहीं था, इस कारण मैं पढ़ नहीं पाया।
हाँ बिल्कुल, हम जानना चाहेंगे कि कौन सी परिस्थितियाँ थी कि आप पढ़ाई नहीं कर पाए।
क्या है मैम, अपने जो कनिया है उस समय में अपने कनिया में सिर्फ 8वीं तक की स्कूल था।
अच्छा,
हमारे गांव से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था हमको, स्कूल कचनारी करके है, वहाँ पे स्कूल जाना पड़ता था। तो क्या है, पहले क्या है मैम, थोड़ा स्थिति सही नहीं था, तो जाने के लिए हमको बहुत दिक्कत होती थी। क्या है, दूसरे के साइकिल में लिफ्ट लेकर के जाना पड़ता था, इसलिए हमको ज्यादा ही दिक्कत हो गया। तो हम 10 तक की पढ़ाई पूरा कर पाए। और क्या है, कचनारी में उस समय में सिर्फ 10वीं तक का ही स्कूल था।
अच्छा, तो फिर उसके बाद पढ़ने की जो आपकी ललक थी वो अधूरी रह गई, तो उसको पूरा करने के लिए आप क्या क्या करते हैं?
जी अब वो तो पढ़ाई तो पूरा नहीं हो सका मेरा, अब उसके बाद मैं क्या है कमाने चले गया हैदराबाद।
अच्छा,
हैदराबाद चले गया, वहाँ पर करीबन मैं 6 महीना तक के ऐसे ही हेल्पर का काम किया। एक मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, वो बोले कि मेरे साथ में ये काम करो ऐसा करके, तो मैं मतलब जल्दी ट्रेनिंग हो गया मिस्त्री काम में।
अच्छा अच्छा, तो हैदराबाद के आपके इस सफर के बारे में हम आगे बात करेंगे, पर उससे पहले आपकी पसंद का एक गीत सुन लें।
तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरा चैन आता है।
क्या बात है, इतना सुरीला गीत आपने हमको सुनाया है अपनी आवाज में, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने इसकी ट्रेनिंग ली है या ऐसे ही सीख लिया?
नहीं मैम, मैं इसकी ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ। क्या है, मेरे को ना स्कूल के जमाने में मेरे को गीत गाने का बहुत ही शौक था।
अच्छा,
जैसे कि कोई भी गीत मेरे को अच्छा लगता था, उसके मतलब उस स्वर में मैं कोई भी गीत मतलब अच्छा सा गीत निकाल के मैं ज्यादातर स्कूल में ना ये झंडा तिरंगा के ऊपर से बहुत अच्छा अच्छा गीत बना के मतलब अपने दोस्त लोगों को देता था।
अच्छा, तो आप लिख भी लेते थे?
हाँ मैं गीत लिखता था।
कुछ है आपके पास कुछ जो हमारे श्रोताओं को सुना सके, लिखा हुआ?
हाँ, मेरा एक बहुत ही लोकप्रिय गीत था जिस समय में, एक गीत आया था नीलकमल वैष्णो जी का।
अच्छा
हाँ, वो सतरंगी ऐसा करके बहुत ही दर्दीला गीत, और ज्यादातर में मेरे को मीडियम साइज का दर्दीला गीत ही अच्छा लगता है। तो उसमें एक मैं गीत बनाया था झंडा तिरंगा पर।
अच्छा
हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे श्रोताओं को भी पसंद आएगा।
बिल्कुल, आप सुनाइए।
हे मूर्ती रंगा रे सदा लहराबे हमर देश मां, मुरी झंडा रे सदा लहराबे हमर देश मां, तोला लहराई कई थौ तोला फहराई कई थौ रे, हे मुरी तिरंगा रे सदा लहराबे हमर देश मां। इसका मतलब बहुत सारा वो है मैम, मतलब पद है।
हाँ एक पद तो सुनाइए जरूर, हमारे श्रोता सुनना चाहेंगे।
और एक गीत बहुत ही अच्छा गीत है, मैं गांधी जी पर लिखा था मतलब उसी एल्बम का।
अच्छा ठीक है ना, सुना दीजिए।
उसी गीत पर मोरी गांधी हिंदुस्तानी गा, गांधी मोर जन हो जाबे पाकिस्तानी गा, ए गांधी मोर मुरी दिसला सजा डरे सौरा डरे ते महान हो गेगा, मुरी दिसला सजा डरे सवार डरे ते महान हो गेगा, हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई हम सब हवन भैया भाई भाई, जान के तेहा ये बात ला बताए जुर्मिल रहो कई केला तै सिखाए।
बहुत बढ़िया
ये भी था।
बहुत ही बढ़िया, देशभक्ति और देश किस तरह से आगे बढ़ेगा एकता के साथ मिलकर, और गांधी जी का प्यार और अहिंसा का संदेश, मिलकर चलने का संदेश आपने अपने इन दोनों गीतों में बताया। लेखनी आपकी थी, लय जरूर आपने दूसरी जगह से ली, लेकिन ये बहुत प्रभावी है, बहुत ही सुंदर है। और हमको लगता है कि अगर प्रतिभा आपके अंदर है तो ये मायने नहीं रखता कि आपने कितना पढ़ाई की है, आप लगातार सीखते रहते हैं और सीख सीख कर अपने आप को परिष्कृत करते रहते हैं, और अखिलेश यादव जी मुझे लगता है इसका एक उदाहरण है। तो अखिलेश जी बहुत अच्छा लग रहा है हमको ये सुनने के साथ ही, और सप्ताह के श्रोता क्रम में हमारे साथ हैं आज साहू टोला कन्या जिला बालाघाट के हमारे श्रोता अखिलेश कुमार यादव जी। तो अखिलेश जी आपने बताया कि आप हैदराबाद गए और आपकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ और आपने काम सीखा, तो हैदराबाद जब आप गए तो कैसे गए, किसने सहयोग दिया और वहाँ क्या क्या परेशानियां आई, क्योंकि जो भाषा हम अपने छत्तीसगढ़ में बोलते हैं या मध्य प्रदेश में बोलते हैं वो तो वहाँ पर हम बोलते नहीं हैं, तो जब काम करना हो तो वहाँ के लोगों से आप कैसे कांटेक्ट करते थे और किस तरह से आपको दिक्कतें आई उसके बारे में जरा बताइए।
ये बात तो सही है मैम कि हैदराबाद में तेलुगु भाषा चलता है
जी,
तो पहले तो हमको समझ में नहीं आया क्योंकि हम शुरू आ रहे थे और उस समय में मेरा उम्र ज्यादा नहीं था, शायद वही था 15-16 साल का।
अच्छा,
मतलब जस्ट पढ़ाई छोड़ने के बाद मैं चले गया था हैदराबाद।
अच्छा,
तो फिर वहाँ पे कुछ भी सामान लेते थे तो हम तो हिंदी में बोलते थे लेकिन उनको कुछ लोगों को समझ में आता था, कुछ को समझ में नहीं आता था, तो फिर वो लोग खुद बोलते थे कि ये सामान तो चाहिए, मतलब जो सामान चाहिए आके निकालो हमको बताओ, ऐसा करके बोलते थे। तो वहाँ पे लेन देन का ज्यादातर पैसा ही चलता था हमारा।
अच्छा, वहाँ की भाषा सीखने की कोशिश की आपने?
हाँ मैं वहाँ का भाषा तो बहुत सीख गया था, वहाँ का करीबन मैं वहाँ 3 साल तक रुका हैदराबाद में।
अच्छा,
6 महीना तक मैं दूसरे के पास काम किया, उसके बाद मैं खुद का कॉन्ट्रैक्ट चालू कर दिया वहाँ पर।
अच्छा,
हाँ तो सन 2010 में मैं स्टार्टिंग में मैं ठेकेदारी का काम लिया था वहाँ पर। अच्छा, हैदराबाद में तो करीबन 2 साल तक के मैं वहाँ ठेकेदारी किया, लगभग 3 साल रुका वहाँ। तो मैम वहाँ बहुत आधा तेलुगु आ जाता था मेरे को, उसके बाद मैं चेन्नई चले गया।
अच्छा, ये यहाँ पे तेलुगु सीखने का फायदा आपको चेन्नई में हुआ या नहीं हुआ?
नहीं, चेन्नई में तो तेलुगु नहीं चलता, मैं वहाँ तमिल चलता है, तो क्या है वहाँ पे थोड़ा मिलती जुलती है तेलुगु, थोड़ा मिलती जुलती है, लेकिन उतना ज्यादा ही मतलब दिक्कत होता है चेन्नई में कि मतलब वहाँ की भाषा अलग ही है।
अच्छा, वहाँ हिंदी कम बोलने वाले हैं।
हाँ, हिंदी कम बोलने वाले हैं चेन्नई में। फिर मैं वहाँ भी ठेकेदारी का काम किया, वहाँ मेरे को बंगला का काम मिला, तो मेरे को ज्यादातर डिजाइन का काम मिलता था। तो मैं डिजाइनिंग का काम, मेरे पास साथ एक हाँ छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला का मिस्त्री था, तो उनके साथ मैं डिजाइनिंग का काम सीख गया और वहाँ पे मैं ठेकेदारी करता था। तो डिजाइनिंग के काम के साथ साथ मतलब बहुत जानकारी मिला मेरे को। और आज की डेट में अभी मैं छत्तीसगढ़ी में ही काम कर रहा हूँ, जुनवानी दुर्ग में काम कर रहा हूँ मैं।
अच्छा, तो ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपका जो काम है वो डिजाइनिंग का है, राजमिस्त्री का है और उनसे काम करवाने का है।
मेरा काम करवाने का है,
काम करवाने का, आप सर्वेयर जैसा आप काम करते हैं, तो इनके जो डिजाइनिंग आपने सीखी उसमें क्या क्या बारीकियां हैं जो आपको पहले 3 साल काम करने में नहीं समझ में आई थी और चेन्नई में वहां पर समझ में आई?
जी, इसमें डिजाइनिंग में तो मैम जैसे अपने सीमेंट से जो सीलिंग होता है, सीलिंग में बॉर्डर बनाना और जो फैन के ऊपर में जो डिजाइन होती है वो बनाना, जैसे कि बाहर गेट के सामने में पर्दा में तरीका तरीका से मतलब डिजाइन बनाना, ये सब जैसे ड्राइंग के हिसाब से जैसे भी ड्राइंग देते हैं घर मालिक वो हिसाब से बन जाता है मैम।
अच्छा, तो ये बारीकियां आपने चेन्नई में जाकर सीखी और उसका आपको
फायदा भी मिला।
तो अखिलेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे श्रोता भी ये महसूस कर रहे होंगे कि जिंदगी में आगे अगर बढ़ना है तो लगातार सीखते रहना चाहिए और अपने काम को परफेक्ट रूप से करना चाहिए, परफेक्शन आना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं। सप्ताह के श्रोता क्रम में आज हमारे साथ हैं अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी, आपने बताया कि आप राजमिस्त्री का काम करते हैं और डिजाइनिंग का काम भी करते हैं, साथ ही हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 2 साल निकले हैं आपके कोरोना काल के, तो इस पर आपके काम का, आपके उद्योग धंधे हैं, आप जिस फील्ड में हैं उस पर क्या प्रभाव हुआ, और जब लॉकडाउन लगा था उस समय आपको क्या क्या समस्याएं आई?
इसमें मैम समस्या तो बहुत सारे आए, क्या है उस समय में हमको आदमी नहीं मिलते थे, अब सब आने जाने के लिए बहुत परेशानी होता था।
अच्छा,
और मैं तो कोरोना काल में यहीं पे था, छत्तीसगढ़ दुर्ग भिलाई में था।
अच्छा
हाँ, तो उस समय में तो हमारा काम बराबर चल रहा था मैम।
अच्छा, आपका काम रुका नहीं है दुर्ग भिलाई में?
हाँ, फर्स्ट जो कोरोना काल था उसमें हम भिलाई में था तो हमारा काम रुका नहीं। अब दूसरी बार जो छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा हुआ ना कोरोना, तो हाँ, हमारा जो आदमी था वो लोग छत्तीसगढ़ में आने के लिए कतराते थे और अच्छा, ज्यादातर तो हमारा काम 2 साल तक बंद ही था मैम।
अच्छा, तो फिर आप लोग का घर परिवार कैसे चला?
नहीं तो उसके लिए है, अपने पास तो खेती किसानी है, हम मैम धान उगाते हैं ज्यादातर, एक ही फसल करते हैं।
अच्छा, कितने एकड़ खेत है आपके?
हम 3 एकड़ है मैम, हमारे खेत ज्यादा नहीं है और हम 3 भाई हैं हमारे परिवार में, मेरा पापा जी हैं और हम 3 भाई हैं, तो मेरे छोटे दोनों भाई ड्राइवर हैं।
अच्छा,
मतलब 14-व्हीलर गाड़ी चलाते हैं, 14 चक्का।
अच्छा अच्छा,
हाँ दोनों भाई चलाते हैं, जैसे कि अपने
ट्रेलर वगैरह चलाते हैं।
हाँ, बड़े वाले ट्रक चलाते हैं।
अच्छा,
तो उनसे भी, अब मैं तो घर में रुक गया था 2 साल।
हाँ,
घर का खर्चा उन्हीं से ज्यादा चलता था मैम। और क्या है, मेरे जीवन के बारे में बोले तो सन 2015 में मेरी शादी हुई है।
अच्छा
जी मैम, और मेरे जीवन साथी भी बहुत अच्छी है और इतना पढ़ाई नहीं किया हूँ।
तो आप नाम भी तो नहीं बता रहे हैं उनका?
हाँ, मतलब मेरे वाइफ का नाम है ज्योति यादव।
अच्छा,
उनका पढ़ाई एमए तक हुई मैम।
क्या बात है, जॉब करती है वो?
हाँ जॉब, मतलब ये लांजी में है, अपने ससुराल बोले तो लांजी है, अपने बालाघाट में।
हाँ
हाँ, हॉस्टल में है, कार्य करती है गर्ल हॉस्टल में।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, पढ़ाई लिखाई हर जगह काम आती है और आप ये मत सोचिए कि आपने इतनी पढ़ाई की, लेकिन आप जो अपने फील्ड में जितना परफेक्ट हैं, तो परफेक्शन भी एक तरह से जो होती है वो अपने फील्ड में आती है, वो भी एक विशेषज्ञता ही होती है। आप भी उस तरह से एक विशेषज्ञ हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप कितने उत्साह और सम्मान के साथ अपनी पत्नी का नाम ले रहे हैं, ये शिक्षा के प्रति आपके लगाव को भी दर्शाता है। अब हम जानना चाहते हैं कि अखिलेश जी अर्पा रेडियो से कब और कैसे जुड़े?
हाँ, ये तो बहुत ही खास बात है मैम। क्या है, मैं उस समय में यहाँ छत्तीसगढ़ में था, तो हम तो रेडियो से लगाव मेरा सन 2000 से है। लेकिन मेरा एक दोस्त है भगवानी राम कार्ति करके, उनसे
जी जी
बात हमेशा होती रहती है। तो
हाँ
उन्होंने मेरे को बताया कि भाई एक रेडियो चैनल है अर्पा रेडियो, उसमें आप मतलब मैसेज करें गीत सुने। उस समय में कार्यक्रम अनीस के संग मितान मन के पसंद ये चलता था जी। उसमें मैं पहली बार मैं संदेश भेजा और मेरे को बहुत ही अच्छा लगा मैम। बहुत कार्यक्रम बहुत क्या है, हम ना सबसे ज्यादा लोकप्रिय आरजे बोले तो हमारे अनिल भैया हैं। उनके बोलने का तरीका, मैं अब देखो लगभग मेरे को 22 साल हो गए रेडियो से जुड़े हुए, अनिल भैया जैसे बोलने का शैली तो मैं आज तक कोई आरजे को नहीं देखा हूँ। मैं सुना ही नहीं हूँ। उनके पास बोलने की कला पता नहीं भगवान से कैसे प्राप्त की है। बहुत ही अच्छा है, उनके बोलने के तरीका बहुत ही अच्छा है मैम।
चलिए, अनीश भैया बिल्कुल प्रसन्न हो रहे होंगे आपसे, आप ये सुनकर अपने लिए। और ये बात बिल्कुल सच है कि अनीश भैया अपने कार्यक्रम के लिए जितनी मेहनत करते हैं उतनी बहुत कम आरजे करते हैं, क्योंकि सिर्फ बोलना नहीं, उसके लिए तैयारी भी बहुत लगती है और वो बराबर उस तरह से मेहनत करते हैं और वैसे ही श्रोता उन्हें पसंद भी करते हैं। इसके अलावा आपको और कौन-कौन से कार्यक्रम अच्छे लगते हैं?
हाँ, हमको अर्पा रेडियो से ये जो शीर्षक गीत है मैम, और जो चिट्ठी आई है मतलब चिट्ठी मिली कार्यक्रम है ना,
जी
ये शनिवार को प्रसारित होता है दूसरे चौथे को
हाँ
जी ये कार्यक्रम। और ज्यादातर तो मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाता मैम, लेकिन अब पहले तो बहुत रेडियो सुनता था, लेकिन अब ज्यादा टाइम नहीं निकाल पाता, काम से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है मेरे को। क्या कि चार साइड चल रहा है अभी, तो चारों साइड में मेरे को जाना पड़ता है मैम।
चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि अब 4 की जगह 8 साइट देखें, पर हमारे कार्यक्रम भी लगातार सुनते रहें। और एक और प्रश्न हमारा कि आपका एक शौक तो हमें पता है कि आपको गाना बहुत पसंद है और आप बहुत अच्छा गाते हैं, इसके अलावा आपके और क्या शौक?
जी मैम, मेरा शौक तो बचपन से खेल कूद में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। जैसे पढ़ाई के समय में मेरे को कबड्डी और क्रिकेट खेलना बहुत ही शौक था मैम। अभी भी क्रिकेट खेलना शौक लगता है, लेकिन क्या काम को देखना पड़ता है ना। हाँ,
तो छुट्टी के दिन खेला करिए।
तो है छुट्टी
छोटे
के दिन
बच्चों के साथ
लेकिन छुट्टी
खेलिए।
छुट्टी के ज्यादातर मैम क्या है, छुट्टी के दिन मेरे को ज्यादा टाइम ही नहीं मिलता है, क्योंकि सभी साइड में जा करके खर्ची देना पड़ता है, पेमेंट देना पड़ता है, उस दिन मेरे को ज्यादा ही काम रहता
ओह, फिर भी
है।
हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति को अपने शौक के लिए भले सप्ताह में एक दिन निकालें, लेकिन जरूर निकालें छोटे बच्चों के साथ
जी
खेलिए। उनके साथ जो आनंद आता है
हाँ
खेलने का,
हाँ हाँ
उसकी तो बात ही
मैं
अलग है।
हाँ जी, मैं अब बच्चे के बारे में याद दिलाया तो मेरा 3 बच्चे हैं।
अच्छा, तो आपने नाम
हाँ,
नहीं
मेरा
बताया।
मेरे बड़े लड़का है अंकित यादव, और बच्ची है श्रद्धा यादव, और छोटे वाले है सौरभ यादव। अभी जो अंकित यादव है 7 साल का है, अभी वो पढ़ाई लांजिश में करते हैं मैम, KG KG 1 में पढ़ाई करते हैं। पहले तो ये कोरोना काल में चालू था स्कूल, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे,
अच्छा हाँ
तो बस स्कूल बंद हो जाने के कारण हमको थोड़ा दिक्कत आ गए, तो हम
हाँ
अभी उनको वहीं पे पढ़ाते हैं, दूसरे स्कूल चेंज करा दिए हैं
अच्छा, तो ये
जी।
एक और बात हम जानना चाहते हैं कि जो बालाघाट में आपका गांव है उसके बारे में भी कुछ बताइए।
जी हाँ, ये बात है, बालाघाट का लास्ट बॉर्डर है, जैसे छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हमारा गांव है, ग्राम साहू टोला कन्या जिला बालाघाट मध्य प्रदेश। तो
हाँ
ये गांव है मैम छत्तीसगढ़ से एकदम ही लगा हुआ गांव है, तो हमारे आसपास वाले ज्यादातर छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। मैं भी पहले छत्तीसगढ़ी बोलता था, और अभी भी मेरे को ज्यादा हिंदी नहीं आता, लेकिन मेरे भाई से इतना हिंदी बोलने का जो ट्रेनिंग है भाई भाई से ही मिला है। और हमारे घर में हम सभी लोग हिंदी बोलते हैं, मतलब हम मेरे 3 बच्चे और मेरे वाइफ और मैं,
हाँ
क्योंकि इससे ना मेरे से ज्यादा मेरे बच्चे को हिंदी आता है मैम।
चलिए, अच्छी बात है। हिंदी जो है हमारी राजभाषा है, तो
जी
हिंदी तो आनी ही चाहिए। और शुद्ध हिंदी आनी
जी
बहुत जरूरी है, तो
जी
आप अपने में सुधार ला रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो ऐसा है कि अपने कार्यक्रम की समाप्ति हम करेंगे, मगर आपका जो कुछ भी लिखा हुआ, चाहे 2 लाइन हो, वो आप गा के करिए।
मतलब गा
हमारा
के
निवेदन है
जी
आपसे कि आप अपना
सोनू
लिखा हुआ अपने स्वर में गा कर करिए।
निगम का एक छत्तीसगढ़ी में गीत है, वो मैं बहुत ही मतलब वो गीत को सुनता था और मैं अपने वाइफ को भी ये गीत के बारे में बताया करता था।
हाँ
तो एक गीत है, न धरती माहे कोनो न कोनो आगास मा, न धरती माहे कोनो न कोनो आगास मा, लाजवाब लाजवाब है भैया हमर अरपा रेडियो है, न धरती माहे कोनो न कोनो आगास मा, लाजवाब लाजवाब है भैया हमर अरपा रेडियो है।
बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश कुमार यादव जी, आपने हमसे बात करने के लिए इतना वक्त निकाला, बहुत बहुत
जी
शुक्रिया।
मैम धन्यवाद।
आप सुन रहे हैं अर्पा कम्युनिटी रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर।